मेरे प्यारे युवा साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। मित्रों, आज 10 अक्टूबर 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और आप सबके साथ ही मित्रों, मैं स्वागत करता हूं अपने उन चार नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की बस कुछ ही दिनों के बाद शुरू होने वाली क्लासेस के लिए दाखिला लिया है। और इन मित्रों के नाम हैं हरीश कुमार पांडे कानपुर उत्तर प्रदेश से, प्रमोद तुलसीराम कादतन आप हैं प्रभानी महाराष्ट्र से, विनीत जैन बरैठा मध्य प्रदेश से और सरिता विट्ठल बावंकर नागपुर महाराष्ट्र से। तो हरीश, प्रमोद, विनीत और सरिता, आप चारों युवा मित्रों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, घड़ी का कांटा लगातार चल रहा है, पृथ्वी भी लगातार घूम रही है और एक एक पल करके दिन भी लगातार गुजरते जा रहे हैं और गुजरते ही जाएंगे। और एक वक्त ऐसा आएगा जब हम सब एक दूसरे के आमने सामने होंगे। दोस्तों, मैंने कल आप लोगों से खाली होकर आने की बात कही थी, खाली होकर आने की बात। कुछ मेरे पास मेल आए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि सर, ये खाली होकर आने का क्या मतलब है। कुछ तो मैंने आप लोगों को बता दिया था, मैं खाली होकर आने की जो बात कह रहा हूं उसका अर्थ आप लोग इस तरह से मत लगाइएगा कि मैं ये कह रहा हूं कि आप अपने आप को मूर्ख समझने लगिए, आप ये मानने लगिए कि मुझे कुछ नहीं आता है। नॉट एट ऑल। वो आत्मविश्वास तो आपको अपने अंदर रखना ही होगा। देखिए, बहुत सीधी सी बात है ना, शब्दों के जब हम अर्थ निकालते हैं तो अलग होता है और उसके भावार्थ को समझेंगे तो वो बिल्कुल अलग होता है। मेरे जो कहने का मतलब है मित्रों, बहुत सरल सा है और वो ये है कि आप सब यहां आ रहे हैं, राइट? फोकस कीजिए कि आप क्यों आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। आप कुछ लर्न करने आ रहे हैं, आप पढ़ने नहीं आ रहे हैं, आप सीखने आ रहे हैं, कुछ लर्न करने आ रहे हैं, ठीक है? पहली बात तो इसको करेक्ट कर लीजिए कि आप पढ़ने नहीं आ रहे हैं, आप सीखने आ रहे हैं। पढ़ तो आपने बहुत लिया है। अब दूसरी बात यह है कि आप क्या लर्न करने आ रहे हैं, क्या लर्न करेंगे, क्या सीखेंगे। बिल्कुल फोकस्ड रहिए, फोकस्ड होकर आपको आना होगा। बिल्कुल अर्जुन के आंख की तरह कि उसकी आंख को सिर्फ चिड़िया की आंख नहीं बल्कि चिड़िया की आंख की पुतली दिखाई दे रही है, फोकस्ड। तो आपका उद्देश्य बहुत स्पष्ट है कि सिविल सर्विस की तैयारी कैसे की जानी चाहिए, आप यह जानने आ रहे हैं, सिविल सर्विस की तैयारी। हाँ, ये बात अलग है कि सिविल सर्विस की तैयारी अपने आप में इतना व्यापक रूप लिए हुए होती है कि अगर हम उसकी तैयारी कर लेते हैं तो दूसरे जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है उनकी भी तैयारी हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप आ रहे हैं स्पेशली सिविल सर्विस की तैयारी कैसे करनी चाहिए यह जानने के लिए, राइट? आप क्यों आ रहे हैं? आप में से बहुत से ऐसे होंगे जो कुछ सालों से तैयारी कर रहे हैं, कुछ दिनों से तैयारी कर रहे हैं, बहुत से ऐसे होते हैं जो बल्कि शुरू ही करने जा रहे हैं। अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अगर आप आ रहे हैं तो कम से कम मैं और हमारी एकेडमी ये मानकर चलती है कि भले ही आप जानते हो, जानते ही होंगे, जान रहे हैं कि कैसे तैयारी करनी चाहिए, आप और अच्छे से जानना चाह रहे हैं, बेहतर तरीके से जानना चाह रहे हैं, उसे और करेक्ट करना चाह रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि अपने इस विश्वास को मजबूत बनाना चाह रहे हैं कि नहीं, मैं जानता हूं और जो मैं कर रहा हूं वो परफेक्ट है। जो भी है, इनमें से कुछ भी हो सकता है, राइट? तो सीधी सी बात है मित्रों कि आप वह जानने आ रहे हैं जो आप नहीं जान रहे हैं। सिंपल सी बात है। देखिए, मैंने थोड़ी सी व्याख्या करके आपको समझाने की कोशिश की है कि आप वह जानने आ रहे हैं जो नहीं जानते हैं, और हम ताउम्र इसीलिए स्टूडेंट बने रहते हैं क्योंकि हम सारी चीजें जान ही नहीं सकते। इसीलिए हम लगातार पढ़ते भी रहते हैं, लगातार लोगों को सुनते भी रहते हैं, लगातार सीखते भी रहते हैं, क्योंकि हम वो चीज नहीं जानते। मित्रों, बस ये भाव अगर आप लेकर आएंगे तो आप देखेंगे कि क्लास में आपको कितना मजा आएगा, 6 घंटे कैसे बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये आप सब इसको महसूस करेंगे, मेरे कहने की बात नहीं है, आप महसूस करेंगे। लेकिन वो महसूस आप तब कर पाएंगे जब इस भाव से आप आएंगे और इस भाव से ही क्लास में बैठेंगे, फिर आप देखें कि आपके अंदर कैसे एक वैक्यूम सा क्रिएट होगा, जिसे मैं जिज्ञासा कहता हूं। और वो जो क्रिएशन ऑफ वैक्यूम है, वो वैक्यूम फिर फटाफट चीजों को आपकी ओर आकर्षित करेगा और वो चीजें आपकी अपनी होती चली जाएंगी। तो मित्रों, जो भी स्टूडेंट अभी क्लास में आने वाले हैं, उनसे मुझे ये डायरेक्ट कुछ बातें करनी थी, और सच पूछे तो मैं जरूर उन्हें ही यह बात संबोधित करके कह रहा हूं, लेकिन ये बाकी शेष दूसरे स्टूडेंट्स पर भी उतनी ही लागू होती है जितनी किसी आने वाले स्टूडेंट पर लागू होती है, क्योंकि वो भी तो आखिर में मुझे सुन रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो ऑडियो के माध्यम से सुन रहे हैं। तो सुनना हो या पढ़ना हो, सब में सिद्धांत यही लागू होता है। तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि अरे यार हम तो नहीं जा रहे हैं तो क्या फायदा है, हम कोई हमारे काम की नहीं है, नॉट एट ऑल, ये तो सबके काम की है। तो मित्रों, आइए अब हम आते हैं अपने न्यूज पर, और आज हम बात करेंगे थोड़ी सी स्वतंत्रता संस्थाओं की, यानी जो संस्थाएं होती हैं एक डेमोक्रेटिक सेटअप में, उनकी स्वतंत्रता पर हम लोग थोड़ी सी बातें करेंगे। मित्रों, जहां तक न्यूज का सवाल है, मैं 2-3 छोटी छोटी खबरें आपके सामने रखना चाहूंगा। एक तो आप लोगों को मालूम ही है कि अर्थशास्त्र का नोबल पुरस्कार कल घोषित किया गया है, और वह यह पुरस्कार अमेरिका के एक अर्थशास्त्री है, रिचर्ड थेलर, उनको दिया गया है, रिचर्ड थेलर, और उनको बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के लिए दिया गया है, यानी कि व्यावहारिक अर्थशास्त्र। इसके बारे में आज अखबारों में काफी कुछ डिटेल में है भी, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लें। उसमें मजेदार बात यह है कि इन्होंने सिंपल तरीके से, अगर हम बात करें, क्योंकि अर्थशास्त्र के नाम पर हमें लगता है कि यार ये बहुत जटिल विषय होगा, जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि हमें अर्थशास्त्री नहीं बनना है तो जटिल नहीं है। हमें अपने जीवन में जो अर्थशास्त्र हमारा चलता रहता है, लेन देन का मामला, उतना ही जानना है। एक उपभोक्ता के रूप में हम कैसे अपने अर्थशास्त्रीय ज्ञान का उपयोग करें, तो फिर अर्थशास्त्र बहुत सरल विषय है, सिंपल सा विषय है, और यही इन्होंने इसमें एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। देखिए, बिहेवियरल मतलब व्यवहार। एक अर्थशास्त्री, या यूं कह लीजिए, अर्थशास्त्री नहीं कहना चाहिए, एक उपभोक्ता। मैं सामान खरीदता हूं, कोई भी सामान खरीदता हूं तो मैं उपभोक्ता हूं, और दुनिया का हर व्यक्ति कुछ ना कुछ खरीदता ही है, तो उपभोक्ता है वो खुद। यहां तक कि रिचर्ड थेलर भी उपभोक्ता है। अर्थशास्त्री होना अलग बात है, उपभोक्ता तो हर कोई है ही। तो उन्होंने केवल ये बताया है कि जब उपभोक्ता किसी भी चीज को खरीदता है, उसकी एक कीमत देता है और फिर उससे एक संतुष्टि प्राप्त करता है, तो उसका मनोविज्ञान क्या है, या आप सिंपल सा कह लीजिए कि उपभोक्ता के मनोविज्ञान पर उन्होंने अपनी बातें कही हैं। हम लोग सोचते हैं कि जो उपभोक्ता होता है वो बड़ा बड़ा सोच समझ कर निर्णय लेता है, वो बड़ा विवेकशील होता है, बड़ा समझदार होता है। इसको उन्होंने खंडित कर दिया कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अर्थशास्त्र के अभी तक जो बहुत से स्थापित सिद्धांत थे, उनको भी उन्होंने तोड़ा है। जैसे हम एक उदाहरण उन्होंने दिया है, आज के अखबारों में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, मैं हो सकता है किसी अखबार में ये उदाहरण न हो। जैसे मान लीजिए कि पेट्रोल सस्ता हो गया, राइट। अब पेट्रोल सस्ता हो गया, मैं मान लीजिए कि हर महीने 20 लीटर पेट्रोल खर्च करता था, और उसके लिए मुझे 2000 रुपए खर्च करने पड़ते थे, 2000 रुपए देने पड़ते थे। अब पेट्रोल 20 उसकी कीमत कम हो गई, और इतनी कम हो गई कि अब मुझे 2000 की बजाय 1500 रुपए ही अपने महीने के भर के पेट्रोल पे खर्च करना पड़ेगा। तो पहले मैं 2000 खर्च करता था, अब मैं 1500 खर्च कर रहा हूं, तो 500 रुपए मेरे पास बच रहे हैं। तो अभी तक का जो अर्थशास्त्र था वो क्या कहता था कि मैं अब ये जो 500 रुपए हैं, इन 500 रुपए जो मेरे पास बच रहे हैं, या तो मैं बचा लूंगा, बैंक अकाउंट में जमा कर दूंगा, या इसे किसी दूसरी चीज पर खर्च करूंगा, क्योंकि ये मेरे पास बच रहे हैं। इसको इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आदमी फिर क्या करेगा कि वो ज्यादा पेट्रोल खर्च करने लगेगा। पहले मेरा 20 लीटर में काम होता था, अब पता लगेगा कि वो 25 लीटर पेट्रोल में फूंक रहा हूं, तो मैं फूंकूंगा 2000 रुपए का ही पेट्रोल। तो इस तरह के उन्होंने बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण दिए हैं। एक तो बड़ा खूबसूरत उदाहरण दिया है कि मतलब उन्होंने जब स्टडी की तो ये पाया गया कि लोगों को दवाई दी गई, उदाहरण के तौर पर जैसे कि ये कहा गया कि भाई ये दवाई तो देखिए 10 रुपए की है और ये दवाई 100 रुपए की है, दोनों एक ही जैसा, मतलब एक ही उसमें है, तो आप कौन सी लेना पसंद करेंगे? तो उन्होंने कहा कि हम 100 रुपए वाली लेना पसंद करेंगे, राइट। 100 रुपए वाली वो दवाई ले गई, और इसके बाद जब उनसे पूछा गया 10 रुपए वाली और 100 रुपए वाली से, तो 100 रुपए वालों ने कहा कि नहीं, हमको ज्यादा आराम हुआ, और 10 रुपए की वालों ने कहा कि नहीं, हमको थोड़ा सा कम आराम हुआ। और मजेदार बात ये थी कि दोनों एक ही गोली थी, केवल दाम उनके अलग अलग बताए गए थे। तो ये है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, आप कह लीजिए। तो दोस्तों इनका नाम याद रखिएगा, और ये जानकारी के लिए बता दूं कि ये उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं जहां हमारे रघुराम राजन जी पढ़ा रहे हैं। और आपने अखबारों में सुना होगा, पढ़ा होगा कि रघुराम राजन जी का भी नाम आ रहा था कि उन्हें भी इकोनॉमिक्स का इस बार नोबेल पुरस्कार मिल सकता है। भारत में जब नोटबंदी अभी की गई थी नवंबर में, तो जो हमारे रिचर्ड थेलर हैं उन्होंने इसका समर्थन किया था, लेकिन उन्होंने इस बात का बहुत विरोध किया था कि 2000 रुपए के नोट जारी किए जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तो सब बेकार हो जाएगा। तो मित्रों ये न्यूज के बारे में थी। दो मैं छोटी छोटी घटना आपको न्यूज के बारे में और बताऊंगा दोस्तों। एक शब्द है दर्पण, ये दर्पण क्या है समझ लीजिए, ये बेसिकली एक पोर्टल है जिसको नीति आयोग मैनेज कर रहा है। ये एनजीओ के लिए पोर्टल है, मतलब एक्सपेक्ट किया गया है कि जो भी एनजीओ जैसे संस्थाएं होंगी वो इस पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगी। जब अपना रजिस्ट्रेशन करा देंगी तो उनको एक आईडी नंबर मिल जाएगा। अब अगर उनको कहीं भी अनुदान चाहिए, सरकार से अगर कुछ मदद चाहिए, अनुदान चाहिए, डोनेशन चाहिए, तो फिर उन्हें अपना वो आईडी नंबर देना होगा जो उनके रजिस्ट्रेशन, मतलब ये कह लीजिए कि पंजीकरण की एक पद्धति है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि दर्पण बेसिकली एनजीओ के पंजीकरण कराने वाला एक पोर्टल है। इसके बाद मित्रों कल मैं जब टीवी न्यूज सुन रहा था तो उसमें ऑल आउट शब्द आया था। कश्मीर घाटी में अभी से जो सेना है उसने ऑल आउट कंपेन छेड़ रखा है। ऑल आउट मतलब जो कश्मीर घाटी है कैसे वहां से आतंकवादियों को निकाल के बाहर किया जाए, तो ये ऑल आउट याद रखिएगा। ये घर के हमारे बेडरूम में लगाए जाने वाला ऑल आउट नहीं, और अर्थ वही दे रहा है। आप उस ऑल आउट को लगा करके अब मच्छरों को बाहर करते हैं और यहां हम आतंकवादियों को बाहर कर रहे हैं, तो ये शब्द आपको मालूम होना चाहिए। मित्रों अब मैं संस्थाओं की स्वतंत्रता पर आता हूं। इससे संबंधित मैं आपको एक आज आर्टिकल भी प्रोवाइड कर रहा हूं, और वहीं से ये आइडिया भी आया है, डॉक्टर भरत झुनझुनवाल जी का आर्टिकल है। उसमें देखिए उन्होंने सबसे पहले सवाल क्या उठाए हैं कि जो किसी भी देश की जो अर्थ व्यवस्था है, जो आर्थिक विकास है, हम यही अभिमान करके चलते हैं कि अलग अलग उसके आधार होते हैं। जैसे एक हमारे दिमाग में यही है कि जहां श्रम सस्ता होगा वहां आर्थिक विकास तेजी से होगा, क्योंकि श्रम सस्ता है तो हम मार्केट में चीजें सस्ते कीमत पर बेच सकेंगे, तो हम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में टिक सकेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत है। जापान में श्रम बहुत महंगा है, इसके बाद भी वो आज दुनिया में सबसे बड़ा, मतलब सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है, तो ये नहीं होता है। दूसरा फिर हम कहते हैं कि जिनके पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत होते हैं वो देश संपन्न होगा, तो इस पे उन्होंने लिखा है कि भाई सिंगापुर के पास तो कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज है ही नहीं, लेकिन वो देश बहुत संपन्न है। फिर हमें लगता है कि नहीं नहीं आज के समय में ना जिसके पास टेक्नोलॉजी खूब होगी, जैसे अमेरिका के पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो अगर टेक्नोलॉजी किसी के पास खूब है तो वो फिर आर्थिक रूप से बहुत सशक्त हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा है कि चीन के साथ क्या हुआ है, चीन के पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, जब वो शुरुआत उसने की थी तो बहुत न्यून टेक्नोलॉजी थी, लेकिन आज वो आप देखिए कि बड़े बड़े लोगों को वो चुनौती, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को वो चुनौती दे रहा है। फिर उन्होंने एक सवाल उठाया, कि भाई हम जो भारतीय हैं जब भारत में रहते हैं तब कोई बड़ा काम नहीं कर पाते, ना हमें कोई नोबेल प्राइज वगैरह मिल पाता है, लेकिन जब यही भारतीय जब विदेश में जाते हैं तो चाहे यूनिवर्सिटी में पढ़ाएं या रिसर्च करें या और कुछ करें, तो क्या कारण है कि वो उनको नोबेल प्राइज मिल जाता है, क्या कारण है? मतलब साइंस वगैरह के बारे में तो हम जानते ही हैं कि चाहे वो रमन जी को मिला हो उन सबको। तो इस पर उन्होंने कहा कि बेसिकली हमें समझना यह होगा कि व्यक्ति अपने स्तर पर काम करता है, सारी चीजें अपने अपने ढंग से अपना रोल प्ले करती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहां के, वो इंस्टीट्यूशंस सही मायने में कितने फ्री हैं, कितने स्वतंत्र हैं, और साथ ही साथ वो कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर वो ये संस्थान अपने आप में फ्री हैं, स्वतंत्र हैं निर्णय लेने के लिए, चीजों को देने के लिए, और रिस्पॉन्सिबल है टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द पीपल, टुवर्ड्स द कंट्री, तब डेफिनेटली वहां जो लोग होंगे उनकी क्षमताएं बहुत ज्यादा होंगी और वे अपनी क्षमताओं का सर्वोत्तम उपयोग कर सकेंगे, संस्थाएं सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। और यदि मित्रों सेटअप डेमोक्रेसी का हुआ तब तो संस्थाएं ही सब कुछ होती है। जैसे भारत के बारे में भी आप देखिए, हम अलग अलग संस्थाओं की बात करते हैं, कभी हम सीबीआई के के वर्किंग पर उंगली उठा देते हैं, ठीक है, कभी मंत्रिमंडल के उंगली पर, कभी विधानसभा, इन सब के जिस तरह की ये जितनी संस्थाएं हैं कभी न कभी हम उंगली उठाते रहते हैं, लेकिन आप देखिए कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उन पर उंगली नहीं उठती, सीएजी है ज्यादातर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का ऑफिस है वहां उंगली नहीं उठती है, सच पूछे तो कोर्ट के बारे में कभी कभी बातें होती हैं लेकिन सामान्यतया कोर्ट के कामकाज पर उंगली नहीं उठती है। इसका कारण क्या है, इन पर लोगों का इतना विश्वास क्यों है, या ये अपने काम को इतने प्रभावशाली तरीके से कैसे कर पा रहे हैं? तो आप देखेंगे कि दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो है कि ये सरकार के हाथों में नहीं है, यानी कि सरकार इनको नियंत्रित नहीं करती है, पहली बात, यानी कि उसकी स्वतंत्रता मौजूद है। दूसरी बात है कि ये संस्थाएं अपनी जिम्मेदारी को समझती हैं कि वो कितना बड़ा काम कर रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण काम कर रही हैं। तो जब वो ऐसा समझती हैं तो बट नेचुरली कि उनके जो काम करने का काम करने के जो तौर तरीके होंगे वो भी बिल्कुल डिफरेंट होंगे। तो ये बात उन्होंने इस लेख में डॉक्टर भरत झुनझुनवाला ने अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश की है, जिसमें इन्होंने न्यायतंत्र की बात कही है दोस्तों, और इसमें इन्होंने एक दो बहुत अच्छे उदाहरण दिए हैं, जैसे कि नॉर्वे के नॉर्वेजियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अनुसार उन्होंने रेफरेंस दिया है, और प्लीज इस दो तीन इस तरह के रेफरेंसेज हैं आप उन्हें नोट कर लीजिएगा, ये आपको हर समय काम आएंगे जब भी आपको ऐसे विषयों पर लिखना होगा। तो उनके अनुसार टिकाऊ आर्थिक विकास के लिए न्यायतंत्र की जो स्वतंत्रता है वो जरूरी है। देखिए बात हम कर रहे हैं आर्थिक विकास की, और उसके लिए जरूरी क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका। फिर आप देखिए कि एक इंस्टीट्यूट को इन्होंने मेंशन किया है कि ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशन राइट, उस इंस्टीट्यूशन ने एक अध्ययन में यह कहा है कि सफल अर्थव्यवस्था के लिए, अगर कहीं की भी अर्थव्यवस्था को सफल होना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट सेंट्रल बैंक, यानी कि जैसे हमारा रिजर्व बैंक है, ये बेसिकली केंद्रीय बैंक कहलाता है ना, महत्वपूर्ण बैंक, केंद्र मतलब सभी बैंकों का बैंक है रिजर्व बैंक। तो उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक को स्वतंत्र होना चाहिए अगर हम इसको अप्लाई करें तो, जबकि भारत में हमारा रिजर्व बैंक उतना स्वतंत्र नहीं है, राइट। अभी भी जो मॉनेटरी पॉलिसी ही है, देखिए मॉनेटरी पॉलिसी में अब क्या है, एक समिति उसका निर्णय लेती है, और उस समिति में तीन तो रिजर्व बैंक के ही लोग होते हैं और तीन उसमें सरकार के द्वारा अपॉइंटेड लोग होते हैं, फिर वो मॉनेटरी पॉलिसी पर निर्णय लिया जाता है। अब सवाल यही है कि जब तीन लोग सरकार के भी हैं तो वो नियम को प्रभावित करेंगे, वहां के जो निर्णय लिए जाएंगे उनको प्रभावित करेंगे, तो हम नहीं कह सकते कि हमारा रिजर्व बैंक पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो मित्रों, मैंने कुछ भूमिका के रूप में आपको बातें बताई हैं, मैं चाहूंगा कि आप इस आर्टिकल को जरूर पढ़ें, ये आपके बहुत काम का आर्टिकल होगा, आपको अलग तरीके का इनसाइट देगा। और इसी तरह का एक और आर्टिकल है फ्रेंड्स, निजी स्वास्थ्य संस्थानों की नकेल कसना जरूरी, ये बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, इसे भी आप लोग जरूर पढ़िएगा, और इनके अतिरिक्त भी मैं कुछ और आर्टिकल आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो मित्रों, ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ मित्रों के मैं नाम लेना चाहूंगा, वो हैं अमित सिंह, परवेज खान, नेमी चंद चोमू राजस्थान से, शशिकला चौहान मुंबई से, सौरभ श्रीवास्तव, सुशांत कुमार दिल्ली से, सचिन यादव, सरिता दुबे, अभिषेक गुप्ता, दीपक झा ललितपुर उत्तर प्रदेश से, अनहत विक्रम, कृतिलेखा सिंह, प्रेरणा उत्तम राव शिंदे उज्जैन मध्य प्रदेश से, और सरफराज कानपुर उत्तर प्रदेश से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं। नमस्कार।